नमस्कार भारत, 13 मार्च दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पता चलेगा होली के बाद।
उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में वेंकैया नायडू जी जाएंगे और उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी हमारे। उत्तराखंड में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और सुश्री सरोज पांडे जी वो जाएंगी।
समाजवादी पार्टी से निष्कासित राज्यसभा सांसद अमर सिंह अखिलेश यादव से खफा, लेकिन नरेंद्र मोदी पर हैं फिदा।
मुझे लगता है कि अभी भी उनके अहंकार का हाल कुछ ऐसा है कि रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐठन अभी तक कायम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि काम नहीं कारनामे बोलते हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उनका कार्यकाल शुरू होगा। राज्यपाल ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। गोवा में 40 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 13 सीटों पर जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने रविवार को सरकार बनाने का दावा करते हुए राज्यपाल के समक्ष 21 विधायकों का समर्थन पत्र भी पेश किया था। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा,
बीजेपी
हमेशा से चरित्र और नैतिकता की पार्टी होने का दावा करती रही थी। क्या ये उनकी नैतिकता और चरित्र है? क्या कोई भी पार्टी बुरी तरह हारने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त करेगी और उन्हें पैसे, कारों और मंत्रालयों का लालच देगी? हम भाजपा के ऐसे किसी भी प्रयास, विशेषकर मनोहर पर्रिकर की आलोचना करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने नीदरलैंड्स में अपने दो मंत्रियों पर चुनावी भाषण देने पर रोक लगा दिए जाने के बाद नीदरलैंड्स की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग की है। अर्दोगान ने कहा है कि नीदरलैंड में फिर से नाजीवाद आ गया है। उन्होंने शिकायत की है कि यूरोपीय संघ के देश नीदरलैंड के व्यवहार की आलोचना करने में नाकाम रहे हैं। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि डेनमार्क ने तुर्की के प्रधानमंत्री की यात्रा टाल दी है, जबकि जर्मनी ने चेतावनी दी है कि तुर्की को मदद देने पर चर्चा करना भी मुश्किल हो गया है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे का कहना है कि तुर्की के भड़काऊ बयानों का कोई बहाना नहीं है। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा, नीदरलैंड्स में जो हुआ है वो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अपमान है। क्या यूरोपीय संघ इस पर आवाज उठा रहा है? नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं, वो सब एक जैसे हैं। नीदरलैंड ने यूरोपीय संघ के सदस्य देश की तरह नहीं बल्कि फर्जी गणतंत्र की तरह व्यवहार किया है। सारी दुनिया देख रही है कि जो तुर्की को मानवाधिकारों, कानूनों और प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाते हैं वो खुद इन मूल्यों का कितना सम्मान करते हैं। मोसुल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई का समन्वय कर रहे अमरीकी दूत का कहना है कि शहर में मौजूद लड़ाकों को बाहर जाने का रास्ता नहीं दिया जाएगा और उन्हें वहीं मरना होगा। ब्रेट मैकगर्ग का कहना है कि अमरीका न सिर्फ इस्लामिक स्टेट को हराने बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लड़ाके बच के न जा पाएं। मैकगर्ग के मुताबिक इराकी सैनिकों ने अब इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले पश्चिमी मोसुल से बाहर जाने वाले एकमात्र रास्ते पर भी नियंत्रण कर लिया है। इराकी सेना ने जनवरी में मोसुल के पूर्वी हिस्से पर कब्जा किया था। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक अब पश्चिमी इलाके के एक तिहाई हिस्से पर इराकी सेना का नियंत्रण है। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा के बाहरी इलाके में कचरे के ढेर में दबने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। बचावकर्मी देर रात तक जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटे रहे। कचरे का ढेर खिसकने से दर्जनों झुग्गियां दब गई हैं। यहां रहने वाले लोगों ने हादसे के लिए फिर से कचरे डालना शुरू करने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फिलोन ने स्वीकार किया है कि एक अज्ञात मित्र ने उनके लिए हजारों डॉलर कीमत के डिजाइनर सूट खरीदे थे। इस नए विवाद का असर उनके चुनावी अभियान पर पड़ सकता है। फ्रांस के साप्ताहिक अखबार जनरल डू डिमांशे का कहना है कि उन्होंने पेरिस के महंगे टेलर से करीब 13,000 डॉलर कीमत से अधिक के दो सूट खरीदे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। रक्षा मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री। जी हां, गोवा के मुख्यमंत्री रहे मौजूदा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक बार फिर गोवा की गद्दी पर बैठ रहे हैं। कैसे हुआ यह सब आगे बताएंगे आपको। उधर मणिपुर में 28 सीटें जीतकर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है, क्यों और कैसे ये भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। इन दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह तय करेंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया है, जिसने बीजेपी को वोट दिया है और जिन्होंने वोट नहीं दिया है, बीजेपी की सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। प्रभात पांडे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री के नाम को तय करने के लिए कल शाम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अब इसका फैसला होली के बाद होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया,
उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में वेंकैया नायडू जी जाएंगे और उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी हमारे उनका सहयोगी के रूप में महामंत्री हमारे हैं, ये वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में नेता चयन की प्रक्रिया की दृष्टि से और विधायक दल के अपने सभी सदस्यों से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उत्तराखंड में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और सुश्री सरोज पांडे जी वो जाएंगी, ये दोनों वहाँ उत्तराखंड में पर्यवेक्षक के रूप में नेता चयन की प्रक्रिया में कार्य करेंगे।
उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, वहाँ भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होली के बाद ही होगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय जुलूस के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी ने उनका अभिनंदन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है।
इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी को मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।
भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो आने वाले दिनों में हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक होते होते पश्चिम और दक्षिण के राज्य, पूर्व और दक्षिण के राज्यों में भी जाने वाली है मित्रों। और ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के चुनाव में फिर से एक बार, अभी जो बहुमत है उससे भी बहुत बड़ा मैंडेट लेकर मोदी जी के नेतृत्व में रुकेगा।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विरोधी दल जिस वक्त हार की समीक्षा में जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की बात शुरू कर दी है। जीत के जश्न के बीच पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने नया मिशन भी रख दिया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे और अब बात गोवा की। गोवा में विधानसभा की 40 में से 17 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति बना ही रही थी, लेकिन उससे कम 13 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा करके कांग्रेस को एक और झटका दे दिया है। यह सब कैसे हुआ जानने के लिए बीती रात मैंने गोवा फोन लगाया और यह सवाल वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभु देसाई के सामने रखा।
जी, 40 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस को 17 सीट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को 13 मिले थे और बाकी लोगों को 10 मिले। तो इसमें पहली तो ये थी कि सबसे ज्यादा सीटों की पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि कल भारतीय जनता पार्टी जो 13 विधायक थे उन्होंने और बाकी 10 लोगों में से 8 विधायक लेके उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जो रक्षा मंत्री है मनोहर पर्रिकर, वो मनोहर पर्रिकर को गवर्नर से वो मिले राजभवन पे जाके कल शाम को, और उसके बाद कल रात गवर्नर मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है और बोला है कि 15 दिनों में वो मेजोरिटी प्रूव करे और उनको जब स्वेरिंग इन उनकी होगी, शपथ विधि होगी, तब से वो चीफ मिनिस्टर का पदभार संभालेंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बहुमत साबित कर पाएगी अपना?
भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक हैं और 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के, 2 गोवा फॉरवर्ड के पार्टी के और 2 विधायक निर्दलीय हैं। इस कुल मिलके 21 है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी गोवा में है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी के चर्चिल अलेमाओ और जो एक निर्दलीय बचे हैं वो भी उनके संपर्क में है और वो भी उनके साथ आ सकते हैं। तो वो कुल मिलके बनेंगे 23 और 21 की जरूरत है गोवा में।
भले ही दावा कर दिया है और राज्यपाल ने कह दिया कि साहब आपको नियुक्त किया जाता है, लेकिन अभी आपको लगता है कि कुछ बाजी पलट सकती है?
एक तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि गोवा फॉरवर्ड जो है, गोवा फॉरवर्ड यानी बीजेपी के विरोध में थी लेकिन वो अभी भाजपा के पक्ष में आई है, तो और कोई ऐसा बचा नहीं है कांग्रेस के पास जो जिसके साथ वो बाजू पलट ले और खुद की सरकार बना दे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अभी तो को ऐसा कोई किसी ने ऐसा तो चित्र तो नहीं दिख रहा है कि दूसरी तरह से कांग्रेस के बाजू से कुछ। कांग्रेस ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए तो हम विपक्ष में बैठेंगे और जिस तरह से उन्होंने सरकार बनी है उसकी निंदा की है और मेजोरिटी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है फिर भी वो बना रही है, उसकी निंदा की है लेकिन उसके सिवाय और कुछ ज्यादा नहीं।
गोवा की मौजूदा राजनीति की तस्वीर बयां कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई। उधर पूर्वोत्तर में असम के दरवाजे से दाखिल होकर भारतीय जनता पार्टी ने अब मणिपुर में भी सरकार बनाने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कमर कस ली है। हालांकि उसके पास कांग्रेस से कम विधायक हैं, तो ये माजरा क्या है समझने के लिए देर रात मैंने गुवाहाटी में हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा से बात की।
रविवार को जो दिन था उस दौरान दोनों ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के जो राम माधव जी हैं जो महासचिव है पार्टी के और कांग्रेस के जो जोशी जी हैं सीपी जोशी जी, वो दोनों ही पार्टी बंद कमरों में लंबी इनकी बैठकें हुई हैं क्योंकि दोनों ही पार्टी के पास बहुमत नहीं है। जहां कांग्रेस को सिर्फ 3 विधायकों की जरूरत है वहीं 10 विधायक चाहिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन आज जो संभावना बनती दिख रही है क्योंकि कल रात को बीजेपी के नवनिर्वाचित जो विधायक हैं और उनके जो समर्थन वाले विधायक हैं उन्होंने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर अपने विधायकों की सूची सौंपी है और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जी ये सारे चीज जो है बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस ने अपने विधायक दल का नेता ओकराम इबोबी सिंह को चुना है और वो आज राज्यपाल से मिलेंगे।
दिलीप ये बताइए कि विधानसभा में बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत है, कांग्रेस के पास 28 है, बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, तो ये बाकी समर्थन कहाँ से हासिल हो पाएगा बीजेपी या कांग्रेस को?
जो 4 विधायक जो हैं नागा पीपल्स फ्रंट के वो एनडीए के साथ हैं और नागालैंड में उनकी सरकार है और वहाँ बीजेपी जूनियर पार्टनर है। इसके अलावा जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं पीए सांगमा जी, उनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके 4 विधायक हैं और इस बीच जो नेशनल पीपल्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कोनार्ड सांगमा समर्थन की बात कह दी है कि हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, तो बीजेपी को इस तरह से 8 विधायक यहां से मिल जा रहे हैं। एक जो लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान जी की वो भी बीजेपी के साथ है। सुबह इस चल रहा था कि भाई इनके पास 30 भी मुश्किल से नहीं हो पाएंगे लेकिन बीजेपी नेता अब कह रहे हैं कि उनके पास 32 विधायकों का समर्थन है और आज दोपहर तक ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी।
ये थे स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा। कार्यक्रम में आगे समाजवादी पार्टी से निष्कासित राज्यसभा सांसद अमर सिंह अखिलेश यादव से खफा लेकिन नरेंद्र मोदी पर हैं फिदा। लेकिन उससे पहले एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हैं।
जी संदीप जी, आज के अखबारों में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। कल उन्होंने भाजपा का जो दिल्ली में कार्यालय है 11 अशोक रोड वहाँ तक वो पैदल चलकर गए और उनके साथ हजारों लोग थे। आज अखबार में उनकी तस्वीर छपी है बड़ी अमर उजाला में हाथ हिलाते हुए और फूल उन पर बरस रहे हैं। जीत के बाद ऐसे फूल बरसना कोई हैरत की बात नहीं है। अमर उजाला लिखता है अमित शाह चुनेंगे यूपी का सीएम। ये आपने बताया कार्यक्रम में 16 तारीख को फैसला आएगा। भले ही पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं लेकिन अखबार की रिपोर्ट से लग रहा है कि अंतिम मोहर अमित शाह को ही लगानी है। वहीं उत्तर प्रदेश में होगी शराबबंदी, ये खबर दे रहा है आज का नव भारत टाइम्स। बड़ी जीत के बाद बीजेपी करेगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शराब को बैन। हालांकि ये जो है कयास लगाने वाली खबर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बिहार के बाद शराब बंद करने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बड़े राज्य हो जाएंगे। ये ऐसा बीजेपी की सरकार कर सकती है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में एंटी करप्शन सैटेलाइट रूम बन गया है, ये खबर भी आज के नवभारत टाइम्स ने दी है। इसके अलावा जैसा हमने कार्यक्रम में बताया, मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री से अब गोवा के सीएम होंगे। तो रक्षा मंत्री
अभी तक उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
हाँ, लेकिन वो नियुक्त कर दिए गए हैं गोवा के मुख्यमंत्री, तो उनकी जगह रक्षा मंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है आज के दैनिक भास्कर अखबार ने, और अखबार लिखता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं रक्षा मंत्री।
एक नया सवाल खड़ा होगा कि फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा।
जी, बड़ी जीत भाजपा ने हासिल की है चुनावों में, तो इधर उधर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वहीं कैप्टन का सरकार बनाने का दावा पेश है, वो भी 16 तारीख को शपथ लेंगे। पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव जीती है। और छात्रावासों ने होली पर लड़कियों के बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है, ये खबर आज के जनसत्ता में है। नई दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों पर ये पाबंदी लगाई गई है। अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा मेनका गांधी ने एक बयान दिया था लड़कियों पर ही पाबंदी से जुड़ा हुआ, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। वहीं मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी है उसमें फिर से मुलायम के नेतृत्व की मांग उठ गई है, ये भी आज का जनसत्ता बता रहा है।
बहुत शुक्रिया। राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का दावा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के दंभ और अहंकार के कारण हारी है। बीबीसी संवाददाता वात्सल राय ने अमर सिंह से बात की और सबसे पहले पूछा कि चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें अब क्या बदलता नजर आ रहा है।
देखिए, मुझे ये पूरा विश्वास है कि अपराध पर नियंत्रण होगा, और अब तक पिछले 14 साल में जिस भी दल की सरकार रही है, व्यापारी, अपराधी और अधिकारी, ये तीनों के तीनों एक ही रहे हैं। सरकार चाहे बसपा की रही हो या सपा की रही हो, लेकिन आबकारी विभाग हो, मिड डे मील हो, तो जो व्यापारी थे वो बदले नहीं गए, जो अधिकारी थे वो बदले नहीं गए। यानी कि जो भ्रष्टाचार का गुमुख और गंगोत्री, वो कल कल छल छल यथावत उसका प्रवाह होता रहा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें भ्रष्टाचार के जांच की बात लिखी है, और बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि काम नहीं कारनामे बोलते हैं, तो इन सभी कारनामों की जांच होगी और दोषी दंडित होंगे और जेल यात्री बनेंगे।
मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आज सामने आया कि अहंकार की वजह से ये हार हुई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है?
आदरणीय मुलायम सिंह जी की राजनीति कोई सामान्य राजनीति नहीं रही है, और न तो शिवपाल की राजनीति सामान्य रही है, संघर्ष की राजनीति रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी ने स्वयं शिवपाल जी के विरुद्ध अपील की कि उन्हें हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जब वह उनके प्रतिद्वंदी हैं तो उनके विरोध में थी। इसके बावजूद वो 53,000 वोटों से इस मोदी जी के सुनामी में विजयी हुए हैं। तो यह पता लग गया कि समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी शिवपाल थे, और समाजवादी आंदोलन के रचयिता और चेहरे मुलायम सिंह जी थे। तो निश्चित रूप से, और लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो सोचता हूं कि मैं बहुत ही छोटा और कुछ व्यक्ति हूं, लेकिन इसके समाजवादी से पार्टी से दो बार निष्कासित एक सामान्य सांसद हूं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत हमारा भी अनुभव तो है। हम सब लोगों को दरकिनार किया गया, यह अहंकार नहीं तो और क्या है।
अखिलेश यादव को आप लगातार भतीजा अपना कहते रहे, मैं जानना चाहूंगा कि इन परिणामों के बाद आप किस तरह का भविष्य देखते हैं अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का?
समाजवादी पार्टी की आत्मा का नाम है मुलायम सिंह, और आत्मा रहित समाजवादी पार्टी मृत है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को मृत देखते हैं। और भतीजा कहते रहे, नहीं, भतीजा अब भी हैं, क्योंकि मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी से अब मेरे राजनीतिक संबंध होने के कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एक बार किन्हीं कारणों से मुलायम सिंह जी मुझे निष्कासित कर चुके हैं और दोबारा उनके सुपुत्र ने निष्कासित कर दिया। अब तीसरी बार मैं वहां जूता खाने नहीं जाना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं मुलायम सिंह जी का आदर करता था, करता हूं, करता रहूंगा। अखिलेश हमारे भतीजे रहे हैं, नहीं, आज भी हमारे भतीजे हैं। मेरा विरोध उत्तर प्रदेश के अहंकारी मुख्यमंत्री से और उत्तर प्रदेश की फॉर्मर फर्स्ट लेडी अपनी पुत्रवधू से था। अब वो फर्स्ट लेडी नहीं रही और अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं रहे।
अब उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसा देख रहे हैं?
जो उनका अंतिम पत्रकार वार्ता है वो भी अहंकार से भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता को मेरी मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन चाहिए। उन्होंने अपनी पराजय को, पराभव को भी शालीनता से स्वीकार करने का काम नहीं किया। इससे मुझे लगता है कि अभी भी उनके अहंकार का हाल कुछ ऐसा है कि रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐठन अभी तक कायम है।
ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह। और कल पाकिस्तान में तीन अहम बातें हुई हैं और हमारे साथी वस्तुल्लाह खान का मानना है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को भी इन तीन बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
कल पाकिस्तान में तीन बातें हुई। फौज ने ऐलान किया कि उसने चाइना से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है जो निचली और दरमियानी ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमानों को बड़े आराम से निशाना बना सकता है। इस सिस्टम के हासिल होने से दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने में पहले से ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी बात यह हुई कि कल पाकिस्तान में कई जगहों पर हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी होली का गुलाल एक दूसरे पर मला और हाथों में हाथ डाल के नाचे भी। सोशल मीडिया पे भी होली की बधाई और रंग बिरंगी तस्वीरों ने बहार लगाई। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पिछली होली पर हिंदुओं के एक जलसे में शिरकत की मगर इस बार वो होली में तो शरीक नहीं हुए, अलबत्ता बधाई का पैगाम ज़रूर जारी हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले में इस बार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने होली को ज़्यादा कवरेज दी और ये कवरेज भारत की 5 रियासतों में चुनाव के नतीजों की खबर पर भी हावी रही। इस बार पाकिस्तानी हिंदुओं की होली की खुशी इसलिए भी बढ़ गई कि सेनेट के बाद अब नेशनल असेंबली ने भी हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी है। इस कानून के बनने से अब ज़बरदस्ती धर्म बदलवा के शादी करने के वाकयात में कमी आएगी क्योंकि पहले तो हिंदू बिरादरी के पास कोई ऐसा सरकारी पन्ना ही नहीं होता था जिससे ये साबित हो सके कि कौन शादीशुदा है कौन नहीं। एक हिंदू लीडर ने कहा, मैरिज एक्ट के बाद अब हम भी फर्स्ट क्लास पाकिस्तानी नागरिक बन गए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे ये इलेक्ट्रॉनिक आंदोलन भी चल रहा है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो खुल के ऐलान करे कि उसे अपने धर्म से कितनी मोहब्बत है। और ये मांग भी हो रही है कि जब तक इस्लाम की तौहीन करने वालों को कंट्रोल नहीं किया जाता तब तक फेसबुक और ट्विटर ही बंद कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे पेजेस ब्लॉक कर दिए जाएं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अदालत से कहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि 4 अरब से ज़ायद पेजेस और वेबसाइट्स को छानना और इनमें से जहरीले पेजेस निकाल के ब्लॉक करना ऐसा ही है जैसे भूसे में सुई तलाश करना। मगर अदालत का कहना है कि ये काम एक हफ्ते में मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जाए। और कल ही पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण अवामी कवि हबीब जालिब की भी 24वीं पुण्य तिथि थी। जब जब भी देश में घुटन हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तब तब जालिब बहुत याद आता है, आज भी आ रहा है। कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुँचती है, न वो सूरज निकलता है न अपने दिन बदलते हैं।
ये थे पाकिस्तान से वस्तुल्लाह खान। और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इसी सप्ताह गुरुवार से रांची में खेला जाएगा। इससे पहले बेंगलोर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने 75 रन से अपने नाम किया। अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि बेंगलोर में खेले गए मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच कई बार जमकर नोकझोंक हुई। ईशांत शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को मुंह चिढ़ाकर दिखाना सुर्खियों में रहा, तो दूसरी पारी में स्मिथ का DRS लेने के लिए पेवेलियन की तरफ देखना गजब हो गया। क्रिकेट की भाषा में इसे गुनाह माना जाता है।
Smith is on 28, Yana bowls. Oh, he struck in front, he's gone. LBW, stone dead. Hanscom's going to have to deliver the bad news. He's motioning to the pavilion as to what they think. Nigel Long's giving him the hurry up. He says that's not on. And Smith goes.
मैच जीतने और सीरीज में बराबरी पर आ जाना भी भारत के कप्तान विराट कोहली के गुस्से को कम नहीं कर सका। स्टीव स्मिथ की इस हरकत को उन्होंने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया।
I saw that 2 times happening when I was batting out there. I pointed it out to the umpire as well.
जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तब मैंने दो बार ऐसा देखा और एम्पायर से कहा भी कि उनके खिलाड़ी प्रामाणिकता के लिए अपने पवेलियन को देखते हैं। ऐसा तीन दिन से हो रहा था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल और विरोधी के खिलाफ खेलना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेखा है जिसे आप लांग नहीं सकते। मैं क्रिकेट के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं करता।
गुस्सा है कोहली तो नया तर्क दिया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने।
I didn't say that, you did.
I was looking at our boys, so shouldn't have done that, and yeah, it was a bit of a brain fade. I think that's probably the first time it's happened, and as I said, it was a brain fade on my behalf.
मेरा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा था, कहा स्मिथ ने, और शायद ये बहाना काम कर गया। तभी तो भारत की शिकायत के बाद भी आईसीसी ने कोई कदम नहीं उठाया और उसके मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। भला ये भी कोई न्याय हुआ? क्रिकेट समीक्षक अयाज पेवन कहते हैं,
मैं ये भी मानता हूँ कि आईसीसी को एक वार्निंग देनी चाहिए थी स्टीव स्मिथ को, और साथ साथ ये भी कहना चाहिए था कि अगर दूसरी बार ऐसा कुछ होगा तो या तो फाइन होगा या सस्पेंशन होगा। और ये स्मिथ के लिए नहीं था केवल, ये इशारा जाता था हर प्लेयर के लिए। और ना आज कहीं और मैच हो रही है तो वहाँ पर भी प्लेयर ऐसी गलती करेगा, वो कहेगा कि भाई स्टीव स्मिथ को तो आपने कुछ नहीं किया था।
और जैसा अयाज बेबन ने कहा, ठीक वैसा ही तब हुआ जब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने भी कह दिया कि DRS रेफरल मुद्दे पर किसी को सजा नहीं दी गई है। मामला और गरमाया जब इस मैच की कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कह दिया कि आईसीसी के कोई फैसला नहीं लेने के बाद अब मैं चाहूंगा कि तीसरे टेस्ट मैच में आउट होने के बाद कोहली DRS लेने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ देखें, उसके बाद देखते हैं कि तब मैच रेफरी और आईसीसी क्या फैसला करते हैं। और अगर गावस्कर की बात मानकर कहीं विराट कोहली रांची में ऐसा कर बैठे तब तो पानी में भी आग लग सकती है। अपने फैसले से आईसीसी पहले ही बैकफुट पर है और दोनों कप्तान रांची में जीत के लिए किसी भी चक्रव्यूह की रचना कर सकते हैं। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल पुरुष एकल वर्ग का खिताब शीर्ष वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने गैर वरीयता हासिल चीन के युगी को 45 मिनट में ही बेहद आसानी से 21-12, 21-10 से मात दी। इससे पहले इस चैंपियनशिप में भारत की चुनौती तब समाप्त हो गई जब पीवी सिंधु और साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में ही हार कर बाहर हो गई। लेकिन गोल्फ में भारत के लिए अच्छा समाचार कल तब आया जब SSP चौरसिया ने इंडियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने अंतिम राउंड में 1 अंडर 71 का स्कोर लगाया। ओवरऑल उन्होंने 15 अंडर 173 के स्कोर के साथ खिताबी जीत हासिल की। उनसे पहले भारत के जीव मिल्खा सिंह और अर्जुन अटवाल 3 यूरोपियन टूर खिताब अपने नाम कर चुके हैं। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कुछ ही देर में भारत में बजने वाले हैं 7:00, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उनका कार्यकाल शुरू होगा। राज्यपाल ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तेयप अर्दवान ने नीदरलैंड में अपने दो मंत्रियों पर चुनावी भाषण देने पर रोक लगा दिए जाने के बाद नीदरलैंड्स की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मांग की है। मोसुल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई का समन्वय कर रहे अमरीकी दूत का कहना है कि शहर में मौजूद लड़ाकों को बाहर जाने का रास्ता नहीं दिया जाएगा बल्कि उन्हें वहीं मरना होगा। ब्रेट मैकगर्ग का कहना है कि अमरीका न सिर्फ इस्लामिक स्टेट को हराने बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उसके इस्लामिक स्टेट के लड़ाके बच के न जा पाए। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा के बाहरी इलाके में कचरे के ढेर में दबने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई है। बचावकर्मी देर रात तक जिंदा बचे लोगों की तलाश में जुटे रहे। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फिलान ने स्वीकार किया है कि एक अज्ञात मित्र ने उनके लिए $1,000 कीमत के डिजाइनर सूट खरीदे थे। इस नए विवाद के बाद उनके चुनाव अभियान पर असर हो सकता है। जापान के एक 50 वर्षीय फुटबॉलर एक प्रतिस्पर्धी मुकाबले में गोल दागने वाले सबसे उम्रदराज पेशेवर खिलाड़ी बन गए हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को विदा दें। नमस्कार।